शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्याय नाम्ने गौरतिशये गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय त्वयैवास्मि त्वयैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नयामि अंगश्यामलिं छटाभिरभितो मन्देकचयन्देवरं जड्डञ्जागुडरोचिसं विदधतं पट्टं भरस्यनिवासिनं हृदिलसद्दामाभिरामोदरं राधासन्दनिवेशितोज्ज्वलभुजम् वृंदावन से लौह वन में गए। यहाँ पर के कृष्ण ने लौह जंघा नामक राक्षस को मारा था और जहाँ पर उन्होंने नौका विहार किया था, इसके बाद में रावण जहाँ पर राधिका जी का जन्म हुआ था यमुना के तट पर था, बाबा ने सवेरे कमल के फूलों से उनको उठा करके ले आए, वो स्थान वहाँ से थे। ब्रह्मांड घाट गए, ब्रह्मांड घाट के बाद में नंद भवन चौरासी खंभा और तत्पश्चात आप लोग दाऊ जी के यहाँ गए थे। उसमें गोकुल के संबंध में क्या नाम भक्ति वेदांत
सागर महाराज
सागर महाराज गोकुल के संबंध में बोलिए। यू शुड स्पीक ऑन गोकुल The glory of Gokul.
Spanish.
The glory of Gokul.
In Spanish.
Huh?
Spanish master.
No, no, no. No one is English.
Man is Spanish speaking master.
Very few.
Hindi.
You can
first of all, I offer my most humble obeisances and glorification of my eternal spiritual master, Bishop of Paramahansa Sisimata, Srila Bhaktivedanta Nayaka Swami Maharaj, Sannyasi Gyan, Vaishnavas and Vaishnavis, and I beg for forgiveness, my English is pretty lame, so I will try to do my best to take that to allow me to speak in Spanish, which is my mother tongue. So today, by the closest mercy of Sri Gurudev, Gauranga, the Vaishnavas, we have the fortune to visit Gokul Mahavan. So, paraphrasing this poem, beautiful poem, I would say, Guru Dev, Jali Guru Dev Nahito, Tabet Kihoito, Sri Gurudev has explained several times that although in Srimad Bhagavatam, apparently Krishna took birth in Mathura, that is not true. And Srimad Bhagavatam says, Advayati Tarata Chakta Savika Sarat, some statements are made in direct way, some indirect way. So in the prison, the jail of Kamsa in Mathura, it was not pertinence of Sudha Krishna, this Bhagavan, who is defined by Sri Goswami as Bhagavan Pajaniya Sarvasa Sri Guna Vishishta. Oh, he is so beautiful, he is so attractive that whoever gets in contact with him is attracted. He cannot avoid being attracted to him. So, in the jail of Kamsa, just an expansion is Vasudeva Krishna from the first Tattva Vyaha, Vasudeva Sankarsan, Pradyumna Arata appeared. He didn't take birth, he just appeared. Shri Gurudev has said many times, how is it possible for someone to take birth 16 years old, this crown and four arms and everything, so many jewels? It is not possible. So he just appeared there. Isn't it a good thing that I prayed, oh, I wish to be our son? So he appeared there. And then, because the Vatsalya Rasa of Devakiya Vasudev is a little bit weak, they were overwhelmed by the presence of these four spirits, as Svayamayi. And then they prayed, oh, please become a little child, little baby, so we can take care of you. And then this Vasudev Krishna told them, okay, please bring me to Gokul Mahavan, to Nanda Baba, to Nanda Baba's house. So, Vasudev took this Vasudev Krishna across the Jamuna River and brought him to Gokul Mahavan, where Sudameya had just given birth to twins. She hadn't noticed. She kind of fell asleep at the time due to so much tiredness, and she had given birth to two twins. One little boy, one little baby, both beautiful, very beautiful boy and baby. When Vasudev came, he just saw this little baby there, and he took her and replaced her by this expansion that had appeared in Mathura, Vasudev Krishna. So then, some Gurudev explains in the land of his natural heart attacker, so many evidence is there to support the fact that Krishna is not the foster son of Nanda and Yasoda. He is eternally the son of Nanda and Yasoda. Although Srimad Bhagavatam, it is apparently he's just a foster son. For instance, next day, we see that when he was born, this the ceremony was performed. So next day, they showed this umbilical cord very proudly, and everyone was so happy there, knowing that Yasoda Maya and Nanda after such a long time making sacrifices and everything, you know, to have a baby, they had such a beautiful baby. Today, the Harikatha there, someone described, I think it was described how when Yasoda Maya woke up in the morning, she saw such a beautiful baby, legs like lotus flowers, face like lotus flower, blue like lotus flower, and she thought, oh my god, I have given birth to a beautiful blue lotus flower. So she was so happy and so amazed. And then when Nanda Baba saw him, he saw something similar. Oh, he's like Kantamani. He's, you know, speckled blue sapphires. It's so beautiful. And everyone was so happy there. And the father was saying that everyone was so happy, it is not allowed to be sad there. So everyone was so happy, laughing and laughing. So everyone laughing, and was so happy. Because this is... That is the main feature of Bhagavan. He says his Sri, his beauty. He's so beautiful, so beautiful. He's so full of ananda that there is no way that someone can feel even a little bit sadness
আপনাকে ওখানে কিছু দেওয়া হয়েছে?
না।
কি বলা হলো?
ওখানে কিছু পান্ডের সঙ্গে
এসেছে। পান্ডাকে ওখানে বিদায় দেয় নাই, এখানে এসেছে কি করবো? 2000 টাকা দিয়ে দেবো, নাই তো এখানে বললে তো সকলেই দিবে, 2000 দিয়েই পারবে। কল বতলা থা উত্তম ভক্তি কা অনুশীলন কিয়া যায় যদি তো শ্রদ্ধা কে সময় হি মে ভক্তি কে প্রারম্ভ মে হি উসকে সব প্রকার কে ক্লেশ দূর হো জাতে হ্যায় और सब प्रकार के शुभ उसके अशुभ गुण हैं उनमें उदित हो जाते हैं। कल हमने बतलाया था अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अब पुनः कुछ ऐसे क्लेश हैं जो भक्ति के प्रारंभ में नष्ट हो जाते हैं। प्रारब्ध, अप्रारब्ध, रूढ़ और बीज। अब समझिए, पूर्व पूर्व जन्मों में किए गए संचित पापों में से कुछ पाप जिनका फल भोगना इस जन्म में है अथवा पूर्व जन्म में जो हम लोगों ने पाप किए हैं, पापों का फल वर्तमान जन्म में भोग करना पड़ता है। अभी जो हम भोग कर रहे हैं सुख और दुख, ये प्रारब्ध पाप कहते हैं। अप्रारब्ध, अनेक जन्मों में किए हुए पाप जो संचित हैं, जिनका भोग अभी आरंभ नहीं हुआ है, उनको अप्रारब्ध कहते हैं। रूढ़ पाप, कूट या सूक्ष्म पाप, जो पाप का बीज, वासना, पाप करने की वासना जिसको कहते हैं, जो आने वाले जन्मों में जिनका फल भोगना है उनको रूढ़ पाप और बीज पाप, वासनामय। हमने मन ही मन में जो संकल्प किया इस आदमी को मार डालेंगे, यहाँ पर हम व्यभिचार करेंगे, यहाँ पर हम बुरा कर्म करेंगे, पहले मन में आती है वासना तब कर्म में परिणत होता है। यही प्रारब्ध कर्म की पृष्ठभूमि है। पहले वासना और तब फिर कर्म में उसको लगते हैं, पाप कर्म करते हैं। भक्ति जब प्रारंभ में आरंभ होती है तो का पाप कर्म करने की वासना भी नष्ट हो जाती है समूल। वासना के आकार में चित्त में ये गुप्त रूप से रहते हैं, ये पाप करने की वासना भीतर ही भीतर अंदर में रहते हैं। और यथा समय में भगवान की इच्छा से ये प्रारब्ध हो करके फलों का भोग कराते हैं। परतत्व से विमुख बहिर्मुख जीव और विद्या से वासना की सृष्टि होती है। और विद्या जो बतलाया, अनित्य सुखों को नित्य समझना, अपवित्र को पवित्र समझना, दुख को सुख समझना और देह गेह पुत्र परिवार में को नित्य समझना, यह है अविद्या। तो ये अविद्या से वासना की सृष्टि होती है। वासनाओं को भोग करने के लिए देव मनुष्य तिर्यक इत्यादि देह धारण कर, उन वासनाओं को भोग करने के लिए मनुष्य देवता पशु पक्षी पेड़ पौधे पर्वत ये जन्म लेने पड़ते हैं। इन योनियों में मनुष्य देही सबके लिए कर्म है देव, वृक्ष इत्यादि योनि देवता योनि पेड़ पौधे ये कर्म योनि नहीं है, केवल फल भोग करते हैं। कुत्ता है किसी को काट लिया, उसका कर्म नहीं बनेगा, उसका फल नहीं भोगना पड़ेगा, किंतु कुत्ते को जो मारेगा उसका फल भोग करने पड़ेगा। यहाँ तक कि जो मच्छर मारेगा, मच्छर काटता है उसका कर्म फल नहीं होगा, और जो मच्छर को मारता है उसका कर्म फल भी होता है। यही तो कर्म बनता है, यही तो कर्म हमारे गोस्वामी लोग क्या कर गए हैं ये देखो। इसलिए मच्छरदानी बना लिया, ये मच्छर काटेंगे नहीं, उनको मारेंगे, घुस जाने पर भी उसको निकाल दो बाहर कर। तात्पर्य यह है कि ये लोग गेले ना, हमारे तो लागे समय समय लागे। अविद्या अस्मिता पांचों प्रकार के क्लेश और ये प्रारब्ध कर्म जो बतलाया है, ये सब साधन भक्ति के द्वारा, चाहे वैधि भक्ति हो चाहे रागानुगा हो, उसके अनुष्ठान से ये दूर हो जाते हैं। और जितने प्रकार के शुभ गुण हैं भक्ति के अनुकूल हैं वो हृदय में प्रकट हो जाते हैं। इसलिए साधन भक्ति को क्लेशाग्नि बतलाया गया है। प्रारब्ध फलम पापम कूट बीजम फलोन्मुखम क्रमेण एव प्रलीयते विष्णु भक्ति रता। जो ही भक्ति में साधन किया जाता है दूर हो जाते हैं क्लेश, किंतु हम लोग देखते हैं कि हमने हमें तो दुख भोग होता है, हमें सुख भोग भी होता है दुख भोग भी होता है, तो क्लेश दूर नहीं हुए हैं। क्या तात्पर्य कृष्ण है गुरु? क्रमशः होता है, एक साथ में नहीं हो जाता। इसलिए हम लोगों के क्लेश दूर तो हो रहे हैं किंतु मालूम नहीं पड़ता। क्रम इतना सूक्ष्म है कि वो मालूम ही नहीं पड़ता है। खाते हैं हम, उससे पुष्टि होती है एक एक ग्रास के साथ, किंतु जब पूरा खा लेते हैं तब मालूम पड़ता है, बीच में नहीं मालूम पड़ता है। इसी तरह से भक्ति करने से ही दूर हो जाए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सचमुच में वो दूर नहीं होते, क्योंकि शुद्ध रूप में वे भजन नहीं करते, मन में कुछ दूसरी वासना लेकर के आते हैं। अब जैसे देखो, परिक्रमा है भक्ति का, भगवान की लीला स्थलियों पर हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पर दिन रात भगवान की कथा होती है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के लिए आते हैं। हम यदि सुनेंगे देखेंगे किसी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड करते हैं, उनका कान धर करके मैं बाहर कर दूंगा और परिक्रमा में उनको नहीं जाने देंगे, चाहे वो लड़कियां हो चाहे लड़के हो। हम जानते हैं ये कौन कौन है, नाम नहीं बतलाएंगे किंतु सजग हो जाए, लड़कियां भी समझ जाए। बॉयफ्रेंड करने के लिए वी हैव नॉट कम हियर टू एंजॉय बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड। आई नो देम, आई नो देयर नेम्स ऑल्सो, सो आई विल किक हिम आउट फ्रॉम आवर परिक्रमा, सो बी केयरफुल। अच्छा, ओ
material desires are hidden in the mind in the form of a seed, and material desires of seeds, they are springing from the first type of klesh called avidya, or ignorance. Yesterday we heard, avidya means to misunderstanding, to consider that which is eternal to be temporary, to consider that which is a source of misery to be a source of happiness. This is avidya. And from this avidya, all these vasanas or material desires are born. To enjoy these material desires, which are in the heart and the seed form, we are taking birth again and again and again. One thing you should we should understand, only the human form of life is called karma yoni. It means only the human form of life is possible to create karma. But all the other species, including the demigods, demons, the trees, animals, and insects, these are called phalabhog yoni. Means they are simply getting the result of their karma. They cannot make any new karma. Only a human being can make that. For example, if a dog bites me, that dog is experiencing no karma. But if I bite the dog or kill him, then I am making karma for myself. If a mosquito comes, he is not making any karma. He is simply acting on his karma, and I squish him, then I am making karma for myself. Pujapati Maharaj gave the argument. Shastra says there are six types of persons, killing them is no harm. Krishna himself said, if a mosquito comes and you kill him, this is one type of aggressor, killing him is not a sin. Don't ask me, ask him. Then Buddha said, this is what our Goswamis have done, the way they have acted, we should act like that. And it's such a big problem, you could put up your mosquito net. So, these five types of avidya, these are all destroyed, both by Raghunuga and by Vadivanti. Also, Kleshakti Subhara, in the state of Sadhanabhakti, all good qualities which are favorable for devotion appear automatically in their heart by the influence of Bhakti Devi. All this Kleshakti Subhara is experienced in the stage of Sadhanabhakti. Thus, we can understand within ourselves how much we have developed through Sadhanabhakti. If we are still experiencing material happiness and misery, that means these five types of clash or disturbance are still there. That means we are still experiencing our karma. Therefore, we have not completely developed our Sadhanabhakti. Also, you should know there are thousands and thousands of gradations or levels of this kleshakti, or destruction of disturbances. Now we cannot understand completely what stage we are in. An example, someone who is eating and their stomach is completely full, when they're completely full, only they can understand I'm completely full. When their stomach is not completely full, then they cannot completely understand what it means to have a completely full stomach. So, all of us have this to various degrees. We have experience of happiness or distress. We have varieties of material desires. It depends upon our sincerity, how much these will be destroyed. So, Guru said, I know that even though we have come for Parikrama and there is Harikata day and night, still so many people are coming, making boyfriends and girlfriends. Guru says, I know who they are. I know their names. If they continue like this and it comes to me, I will throw them out of the program and I'll make sure they'll never come for any future Parikram. Go Prema.
पंडा जी लिखना है कुछ हाँ
थोड़ा सा लिखना
क्या नाम है?
कन्हैयालाल नाथूराम। कन्हैयालाल सनफ नाथूराम।
कन्हैयालाल
कन्हैयालाल सनफ नाथूराम नाथूराम
नाथूराम। सब सन्यासी लोगों का महाराज का इनका दर्शन करा ले। श्रीमद् भागवत में भी ऐसा कहा गया है, यत पाद पंगच पलाश विलास भक्त्या कर्माशयम ग्रथित उद्ग्रथयन्ति संत तन्न रिक्त मतयो जतो अपि रुद्ध श्रोतास गणम श्रोतो गणास्तस्मरणम भजम वासुदेव। सनत कुमार जी पृथु महाराज से कह रहे हैं, हे राजन, संत महापुरुष वैष्णव लोग जिनके श्री चरणों की अंगुलियों की छिटकती छटा का स्मरण कर अहंकार के ग्रंथि को जो कर्मों से गठित है उसको छिन्न भिन्न कर डालते हैं, जिस प्रकार इंद्रियों का प्रत्याहार करके भी निर्विशेषवादी सन्यासी लोग वैसा नहीं कर पाते। जन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनाद जल प्रणवाद स्मरणादपि क्वचित स्वादो अपि सद्य शवनाय कल्पते कुत पुनस्ते भवगन भगवन्नु दर्शनात्। देवहूति भी ऐसा ही कह रही हैं कपिल देव जी से, हे भगवान, आपके नामों का श्रवण या कीर्तन करने से भूले भटके कभी आपका बंधन स्मरण करने से ही कुत्ते का मांस खाने वाला चंडाल भी पवित्र हो जाता है और वह सोमयाजी ब्राह्मण के समान पूजनीय हो जाता है। फिर आपका दर्शन करने वाला का फल कैसा होगा? इस प्रकार से समस्त प्रकार के प्रारब्ध कूट बीज पाप सब उससे दूर हो जाते हैं। जैसे कुछ लोग जो हैं वो भगवान की इच्छा से होता है, जैसे द्रौपदी को इतना कष्ट हुआ पांडवों का, ये कर्म फल नहीं है, भगवान की इच्छा से लीला है। इसी तरह से सीता जी का हरण हुआ वो पाप के वजह से नहीं, वो रामचंद्र जी की लीला है। कभी कभी वैष्णव के भी शुद्ध भक्ति का अनुशीलन करते हैं, उनका ये सब दूर हो जाना चाहिए, प्रारब्ध या कूट बीज सब अविद्या, किंतु देखा जाता है उनको दूर, भगवान जानबूझ करके उनके प्रारब्ध कर्मों को भुगाते हैं, जिससे वो अपने को दीनहीन समझें, दीनता बनाने के लिए। उनका दुख भी नहीं है, प्रारब्ध कर्म नहीं है। अब इधर विनष्ट हुआ प्रारब्ध अप्रारब्ध कूट बीज सब, और साथ ही साथ में भक्तों के शरीर में निखिल भक्ति पोषक गुण भी उदित हो जाते हैं, इसलिए भक्ति को शुभदा कहते हैं। सर्व महागुण गण वैष्णव शरीर कृष्ण भक्त कृष्ण गुण सकल ही संचारे। श्रील चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं साधक भक्तों के कतिपय शुभ अशुभ गुणों का उल्लेख कर रहे हैं। सर्वप्रथम दुख जनक विषयों के प्रति उनकी वितृष्णा हो जाती है, वैराग्य हो जाता है, वैसे कर्म ही नहीं करते हैं, पाप कर्म उनमें वासना भी नहीं होती। भक्ति साधकों की इंद्रियों के द्वारा भगवान के नाम रूप गुण लीला का ये सब होता है कृष्ण, इसलिए उनके जड़ीय दुख सब दूर हो जाने चाहिए, किंतु किसी को देखा जाता है कि दुख है किसी वैष्णव को, तो उनमें ऐसा मत सोचना है कि कर्म फल के वजह से, भगवान कृपा करके उसको दीनहीन बनाने के लिए कह रहे हैं। यही सब गुण है वैष्णव लक्षण, सब कहा न जाए करी दिग्दर्शन, कृपालु भक्त कृपालु होता है, दूसरों का दुख लेकर के उसको दया हो जाती है। अकृत द्रोह, कोई द्रोहाचरण करने पर भी ये द्रोहाचरण नहीं करता, दुर्योधन इतना द्रोहाचरण करने पर भी युधिष्ठिर महाराज द्रोहाचरण नहीं करते, किंतु वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता तो ये भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ते, जितना ही अत्याचार करता है उतना ही ये सह लेते हैं। सत्य का साथ सब समय सत्य बोलते हैं, और सत्य साथ परम सत्य कृष्ण है, त्रिसत्य हैं, सत्यों के मूल हैं, इसलिए कृष्ण का जो भजन करता है वो सत्य सार है, निर्दोष, कोई भी उनमें दोष नहीं होता, बदन न्याय बड़े उदार होते हैं, मृदु अत्यंत मृदु व्यवहार करते हैं, मधुर बातें बोलते हैं, सूची सब समय पवित्र, अंतर और बाहर सब समय पवित्र रहते हैं। अकिंचन कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त तो उनका कुछ भी साथ नहीं रहता, जैसे रूप सनातन इत्यादि अकिंचन है, ऐसे कुछ रखते ही नहीं है। सर्व उपकार समस्त लोगों का उपकार करते हैं, कभी किसी की निंदा इत्यादि पर चर्चा नहीं करते। शान कृष्ण ही कशरण, कृष्ण के शरणागत होते हैं। अकाम कोई कामना वासना नहीं होती। अनिह स्थिर विजित सड़गुण सड़गुणों को विजय करने वाले अनी अपनी प्रशंसा इत्यादि की इच्छा नहीं होती। बहुत मधुर भाषी मानद अमानी गंभीर करुण मैत्र कवि दक्ष मौनी। इसमें कृष्ण ही का शरण मूल है। कृष्ण का शरण यदि नहीं लेते तो और सब गुण रहने पर भी उसका कोई मतलब नहीं। और कृष्ण का कृष्ण के शरणागत हैं इसलिए इनमें सभी गुण हैं। मायावादियों में भी सारे ये गुण हो सकते हैं किंतु कृष्ण ही का शरण नहीं होता इसलिए उनका ये सब होना बेकार का है। ठीक है
बच्चे को थोड़ा सा कंठी कन्हैया साथ में है कंठी चाहिए उसको बच्चे को
नहीं समझ
कंठी बच्चे के लिए
कंठी तुम ऐसे समझ में आओ जिसमें दे सके
अभी तो कब आऊँ मैं बताओ
कल भी आ जाओ 9 बजे के करीब मैं दे दें
Again, he said, Ignanamadeya Sravanam Kirtana, Ye Prana, etc. He said here, just by hearing the name and performing Kirtan of the name, then even a person in the lowest section of society who eats the flesh of dogs becomes equal to a Brahman who performs the Somayagya sacrifice, so much they become pure. If someone becomes so pure just hearing and chanting the name, then what to speak of the purity of the Vaishnava who's had the direct vision of the Lord? So, by this sadhu bhakti, all the 5 types of klesh, as well as the 4 levels of pap, of karma, such as parabdha, aparabdha, kuta, and bija, are all destroyed. But sometimes we see in the topmost devotees, like Draupadi, they have so much suffering. But we should understand this suffering is not the result of their previous activities. For example, when Sita was kidnapped by Ravan, she underwent so much unhappiness. But this is no karma, this is the lila of Sri Ramchandra. Therefore, sometimes Krishna may seem fit to give a Vaishnava some unhappiness. But we should understand this is not a result of their previous sinful activities. Rather, this is Bhagavan's mercy upon them to keep them very humble. Therefore, Krishna, Krishna, Bhakti Guru, Sakale Sanchari. Krishna empowers the devotee with all of his own good qualities. Tajateki Vaishnava Yamaharitu Pachari Vishchari Tari Tan Paramanandasu. If we see unhappiness in a Vaishnava, we should understand that this is actually one great form of mercy. And this is not their karma, this is direct mercy of the Lord Himself. There were Vaishnavas equipped with all 26 good qualities.
Premananda,
he is independent, Swatantra. He is independent, Swatantra. He never comes anywhere.
He goes to Parikrama. He has paid?
No, nothing.
But then why he goes?
So much
he also receives service and he doesn't want to go. He just comes.
He
is helping with prasadam.
Tell him to come to me. Tell him to come to me.
Vaishnava is Satya Sa. Means they accept the essence of everything, the absolute truth, Sri Krishna, who is true in Tri Satya, in part the 3 phases of time, in part the present and future.
Also.
I will call. I will tell them to tell.
A Vaishnava is nirdosh. A Vaishnava has no fault, and they never see the faults in others. A Vaishnava is very broad-minded. They're very sweet-speaking. They're very pure, internally and externally. They are akinchan, means they have nothing except Haribhakti, like Sri Rupa and Sanatana Goswami. They are sarva-upakarika. They always act for the benefit of others. They never blaspheme others. They are always peaceful. Krishnaika sananam. They are completely surrendered only to Sri Krishna. They are steer, fixed, anir, no desire for their own position or sense gratification. They are gambhir, very grave, mona, silent, daksha, expert, mani, namani. They always give respect to others, but never demand respect for themselves. So all these qualities are empowered in the heart of the devotee in who has surrendered and taken the shelter of Bhakti Devi. But we should understand of all these 26 qualities, one is the main, or angi, that is Krishna-ika sadhana. The main quality of a Vaishnava is he is exclusively surrendered to Sri Krishna. If the other 25 qualities are there,